तो आप सब अभी रथ यात्रा की तैयारी में हैं। जैसे हम गंगा जी का जल गंगा जी को ही अर्पण करते हैं, सूरज से उत्पन्न होने वाले अग्नि दीप रूप में हम सूरज को ही अर्पण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक वस्तु जो हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं वो भगवान की ही संपत्ति है, भगवान का ही है, वो हमारा नहीं है। लेकिन केवल हमारे भक्ति भाव से हम यह अर्पण करते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण केवल हमारी भक्ति देखना चाहते हैं, इसलिए जो भी हम करते हैं भक्ति मार्ग में वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। भगवान ने दी हुई सारी सुविधाएं, सारा धन, सब कुछ भगवान के लिए ही हमें पुनः अर्पण करना है। रथ यात्रा ये भी एक उत्सव है जिसमें हम हमारा सब कुछ, जो भी कुछ है, हम परिश्रम करते हैं, धनार्जन करते हैं, कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान ने ही हमें बुद्धि दी है, भगवान ने ही हमें धन दिया है, भगवान ने ही हमें बल दिया है, कोई योग्यता दी है, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। इसलिए उसी चीज को पुनः भगवान की सेवा में लगाना है। अगर वो हम अपनी सेवा में लगाते हैं तो वो पाप कहलाता है। किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, लेकिन सब ऋणी हैं। जब कोई एक बैंक से कर्ज लेता है, हो सकता है उसने 1,00,000 रुपए का कर्ज लिया हो, किसी ने 10,000 रुपए का कर्ज लिया हो, किसी ने 10,00,000 का लिया हो, लेकिन सब ऋणी हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि ये मेरा धन है। वो ऋण जब तक नहीं चुकाए, उस व्यक्ति को हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे इस ऋण को फिर से ठीक किया जाए। उसी प्रकार से हम जब दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम बहुत ऋणी होते हैं भगवान के, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ होता है। और जब तक हम ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तब तक हमारा ऋण चुकता नहीं है, बल्कि भगवान ने हमें इतना दिया है कि वो ऋण चुकाना मुश्किल है हमारे लिए। इसके लिए एक ही उपाय है कि हम इतनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा करें कि वो इतने प्रसन्न हो जाएं कि हमें वो ऋण मुक्त कर दें। कभी कभी जब बैंक से कोई व्यक्ति लोन लेता है और फिर उसको तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत वो दे देता है पैसा, फिर बाद में हाथ खड़ा कर देता है। अगर बैंक कृपा करती है तो उसको ऋण मुक्त कर सकती है, ऋण माफ कर सकती है, ठीक है चलो बाकी का नहीं दिया, इतना तो दो कम से कम, बाकी ठीक है माफ। उसी प्रकार से भगवान का ऋण चुकाना हमारे लिए असंभव है। हम क्या दे सकते हैं भगवान को खुश करने के लिए? भगवान तो षडैश्वर्य संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम है, सब कुछ उन्हीं का है। तो हमारा धन, हमारी बुद्धि, ये सब थोड़ी भगवान को प्रभावित कर सकती है। शास्त्र में बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव शरणं भव इति गणा, कि भगवान श्री कृष्ण वो हैं जिनके पास 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में, असीमित मात्रा में विद्यमान है। वो कौन से हैं 6 ऐश्वर्य? एक तो धन, भगवान के पास सबसे ज्यादा धन है क्योंकि सब कुछ उन्हीं की संपत्ति है। सर्वलोक महेश्वरम, ये सारे अनंत कोटि लोक इस एक ब्रह्मांड के भीतर, वो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। ये एक ब्रह्मांड ही नहीं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और ये सब भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति है। हमारे लिए थोड़ा सा बैंक बैलेंस, थोड़ा सा चांदी सोना, एक घर गाड़ी वगैरह काफी कुछ मूल्यवान दिख पड़ता है, लेकिन इस सारे पृथ्वी के सामने हमारा धन क्या है? कुछ भी नहीं, तुच्छ है। और ये पृथ्वी एक ब्रह्मांड के सामने क्या है? कुछ भी नहीं, तुच्छ है। और ये एक ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सामने क्या है? कुछ भी नहीं, तुच्छ है। और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या है? कुछ भी नहीं, तुच्छ। जैसे सरसों के दाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे सरसों के बीज, इतने छोटे छोटे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक सरसों का दाना खो देते हैं तो आप हाय हाय करके शोक नहीं करते हैं कि एक सरसों का दाना हम खो गए, कुछ भी नुकसान नहीं आपके लिए। तो भगवान श्री कृष्ण की संपत्ति इतनी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भी नाश हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब कोई बड़े घर का निर्माण करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन कृष्ण भक्त होते हैं वो समझते हैं कि ये तो कृष्ण की कुटिया है, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इसलिए यहां पर नंद महाराज, प्रभु यशोदा मैया, माता जी, देखो वो सब भक्तों के लिए बना रहे हैं घर। उनका रहना तो बाय द वे है, बस इधर रहना है, लेकिन सब भक्तों के लिए उन्होंने बनाया हुआ है ताकि कृष्ण की सेवा यहां हो, कृष्ण भक्तों की सेवा यहां पर हो। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो कि उनकी संपत्ति है, ये सब तुच्छ है उनके लिए, क्योंकि उनके पास सारा भगवान को उनका धाम पड़ा है, वैकुंठ जगत, जो इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना ऐश्वर्य है उस धाम में कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें ये सब कल्पना करना चाहिए कि हम जब इस दुनिया के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं तो कितना व्यर्थ हमारा प्रयास है। प्रयास कर करके भी जितने भी लॉटरी जीत जाएं, फिर भी कितना पाएंगे हम? क्या मूल्य है इस सब का? करोड़ों करोड़ों रुपए भी प्राप्त कर लें, क्या मूल्य है इसका? श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि जब हम यहां पर हैं तो कोई वस्तु हमको बहुत बड़ा विशाल लगता है, लेकिन जब हम हवाई जहाज से जाते हैं तो ये बड़े बड़े इमारत भी छोटे छोटे मैच बॉक्स की तरह दिखते हैं, इतना इतना छोटा, और आदमी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो अगर एक हवाई जहाज में जाकर इतने बड़े बड़े इमारतें जो हैं हमको इतने छोटे छोटे मैच बॉक्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, तुच्छ दिखाई पड़ते हैं, तो और ऊपर 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 गोलोक वृंदावन में जाइए, वैकुंठ जगत में, तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से और कितना तुच्छ लगेगा ये। भगवान कृष्ण जब देख रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके लिए तो सब छोटे 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 छोटे, कोई फर्क नहीं उनके लिए। जैसे जब चींटियां मर जाती हैं तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ देखते नहीं। हजारों लाखों चींटियां मर जाती हैं, कभी बारिश आ जाता है, बारिश में थोड़ा पानी सड़क में भर जाता है और कितने हजारों चींटियां मर जाती हैं, लेकिन कोई बेलगाम बंद नहीं होता उस समय, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, कोई फर्क नहीं उनको। तो फिर हमारा धन उनके धन के सामने क्या है? तो हमारे धन से क्या हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं? अगर एक व्यक्ति है जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं, बहुत अमीर आदमी है, और अगर दूसरा कोई व्यक्ति है जो गरीब है, उसके पास केवल 100 रुपए हैं, वो जाके उस दूसरे व्यक्ति के पास कहे, देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखा मेरे पास 100 रुपए है, तो दूसरा व्यक्ति प्रभावित होगा? उसके पास तो 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसके लिए 100 रुपए क्या है? तो उसी प्रकार से हम भगवान के सामने हमारा धन दिखाएंगे तो भगवान क्या प्रभावित होंगे? नहीं, भगवान को तो क्या लेना देना उनके हमारे धन से, उन्हीं का धन है वैसे भी। तो इसलिए धन से भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, ऐश्वर्य से, क्योंकि भगवान पूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। दूसरी बात, वीर्यस्य, पूर्ण शक्तिमान है भगवान श्री कृष्ण, सारी शक्ति, जितने भी बड़े बड़े यहां पर मल्लयोद्धा हैं, जितने भी सैनिक हैं, जितने भी और बड़े बड़े पहलवान हैं, कुश्ती करने वाले हैं, उन सब की शक्ति भगवान के सामने क्या है? अब किसी एक चीज का नाश करना है तो कितना हमें ताकत लगाना पड़ता है। एक चीज बना देते हैं, इमारत को भी अगर तोड़ना है कितना कष्ट होता है, हथौड़ा मार मार के उसको तोड़ना पड़ता है। पुराने जमाने के निर्माण जो है उनको तोड़ना तो प्राय असंभव, आजकल के निर्माण तो जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों को यूं तोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। एक पृथ्वी का नाश करने के लिए लोगों को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बड़े बड़े एटम बॉम्ब बनाओ फिर भी पृथ्वी नष्ट नहीं होती। लेकिन भगवान ने एक चुटकी बजाई तो बड़े बड़े सुनामी आ गए, है ना। भगवान के एक चुटकी से लाखों लोग मर गए, पृथ्वी के एक छोटे से कंपन से कितना सत्यानाश हो गया, कितना बड़ा उत्पात हो गया। तो भगवान की शक्ति कितनी है, और ये जो सुनामी वगैरह की शक्ति है, भगवान की शक्ति के सामने तो कुछ भी नहीं है। मम तेजोंश संभवम, ये मेरे तेज का, मेरे शक्ति का, मेरे बल का एक अंश मात्र है हे अर्जुन। यद्यद् विभूतिमत् सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ये जितने भी विभूतियां हैं, जितने भी बड़े बड़े शक्तियां हैं यहां पर, जितने भी ऐश्वर्यशाली वस्तुएं हैं, वो सब मेरे सौंदर्य के, मेरे यश, मेरे शक्ति के अंश मात्र है। तो फिर हमारे शक्ति से तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। जो भी शक्ति हमारे अंदर है, किसी के अंदर कम हो सकती है, कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं। अब देखिए, किसी के पास 100 वाट का बल्ब है और किसी के पास छोटी सी मोमबत्ती है, किसी के पास 400 वाट का बल्ब है, किसी के पास वो जो स्टेडियम में जो लगाते हैं बड़े बड़े लाइट, वो है। लेकिन इन सब की तुलना सूरज के सामने क्या है? चाहे जुगनू हो या चाहे बड़ा बड़ा स्टेडियम का लाइट हो, सूरज की तुलना में दोनों लाइट बराबर। सूरज को क्या फर्क पड़ता है कि अरे ये इतना बड़ा लाइट और ये छोटा लाइट, सूरज के सामने तो ये दोनों लाइट इतने छोटे हैं, इतने तुच्छ हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दृष्टिकोण से लगता है ये तो मोमबत्ती और वो इतना बड़ा दिया, इतना बड़ा लैंप, लेकिन सूरज से कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज को। उसी प्रकार से कोई कमजोर आदमी हो, शक्ति नहीं है, कोई बिल्कुल बलवान हो, लेकिन भगवान के सामने क्या फर्क पड़ता है। भगवान तो सर्व शक्ति के सागर है, स्रोत है। तो हमारे शक्ति से भी हम भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः, यश प्रसिद्धि, यहां हमारी प्रसिद्धि कितने दिन तक चलेगी? थोड़े दिन तक रहेगी, और कितने लोग हमारे बारे में जान सकते हैं? फिर भी लोग इतना प्रयास करते हैं कि हमारा यश सब जगह फैले, लेकिन भगवान का यश कितना है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यहां पर हम बेलगाम में थोड़े प्रतिष्ठित हो गए तो हमको लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा बहुत हो गई, लेकिन सारे भारत में तो नहीं है, सारे विश्व में तो नहीं है, और ये विश्व भी बहुत छोटा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्रसिद्धि देखिए, हर एक लोक में उनका गुणगान हो रहा है। इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी लोक हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनमें उनके भक्त हैं, कहीं कम मात्रा में, कहीं ज्यादा अधिक मात्रा में, लेकिन सब जगह उनके भक्त हैं, और वो सदैव श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण इतने प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म लोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक भगवान का गुणगान हो रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो एक ब्रह्मांड, हर एक ब्रह्मांड के भीतर हो रहा है, और ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मिलाकर जो है, ये तो भगवान के धाम का एक छोटा सा अंश है। भगवान के धाम में तो हर जीव भगवान का गुणगान कर रहा है। तो भगवान की प्रसिद्धि कितनी है, उसके सामने हमारी प्रसिद्धि। और भगवान की प्रसिद्धि शाश्वत है, हमेशा। हमारी प्रसिद्धि क्या है, जब तक हम हैं थोड़ा बहुत लोग हमारे बारे में जानते हैं, जब मृत्यु हो जाएगी फिर सब कुछ खत्म। इतिहास में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कितने राजा महाराजाओं को हम याद करते हैं, 400-500 साल पहले थोड़े राजा थे उनको अब याद करते हैं, इतिहास के ग्रंथों में, किताबों में पढ़ाया जाता है स्कूल में। लेकिन 10,000 साल बाद कोई याद करेगा, राजा अकबर थे, ये राजा वो राजा को याद करेंगे, को सब भूल जाएंगे, लेकिन कृष्ण को नहीं भूलेंगे, कृष्ण के भक्तों को नहीं भूलेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि सबसे बड़ा यश क्या है, तो रामानंद राय ने क्या उत्तर दिया, कृष्ण भक्त होना सबसे बड़ा यश है, सबसे बड़ी प्रसिद्धि है। इसके लिए उदाहरण प्रहलाद महाराज का नाम देखिए। प्रहलाद महाराज तो सत्ययुग में हुए, लाखों 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 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद का नाम बच्चा बच्चा यहां जानता है। लेकिन जो भौतिक राजा हैं, बड़े बड़े राजा भी हुए हों, 400-500 साल में सब भूल जाएंगे उनको। तो भगवान श्री कृष्ण का यश ये अतुलनीय है। तो अगर हमारा थोड़ा यश है तो उससे हमें गर्व अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यश के सामने भगवान का यश तो असीमित है। तो हमारे यश से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रीय, श्री मतलब सौंदर्य, कितने भी सुंदर हम हों, लेकिन हमारे सौंदर्य के सामने, भगवान के सौंदर्य के सामने हमारा सौंदर्य कुछ नहीं है। ये भौतिक शरीर का सौंदर्य क्या है, आज थोड़े क्षण के लिए है, जब तक युव अवस्था है तब तक ठीक है, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हम आईने में देखते हैं वैसे वैसे चिंता बढ़ती रहती है, अरे रे रे बाल सफेद होते जा रहे हैं, अरे रे रे ये कम हो गया, अरे चेहरा वैसा सुंदर नहीं लगता, अरे रे रे अभी वजन बढ़ते जा रहा है, अरे पहले जैसे हम युव अवस्था में सुंदर दिखते थे अब नहीं लग रहे हैं, है ना। सबको चिंता होती है कि नहीं, ये सौंदर्य क्या है। भागवत में बताया जाता है चमड़े की थैली का सौंदर्य है ना। ये शरीर क्या है, क्यों इस शरीर के सौंदर्य से हम इतना प्रभावित हुए। तो हमारे सौंदर्य से को हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि जब नर नारायण ऋषि बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे थे, तो उस समय इंद्रदेव कामदेव वगैरह थोड़े चिंतित हो गए कि अभी अपने तपस्या के बल पर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर हो सकता है हमें कुर्सी से हटा देंगे, स्वर्ग का राजा ये मेरा पद है, इंद्र सोच रहे थे, तो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि कामदेव के माध्यम से इनका पतन कराया जाए, तो उन्होंने स्वर्ग के एक अप्सरा को भेज दिया जो कि वह नृत्य करने लगी। नर नारायण ऋषि का ध्यान भंग हो गया, उन्होंने आंखें खोली, तुरंत वह समझ गए कि ये इंद्रदेव क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो क्रोधित नहीं हुए। अपने योग के बल पर उन्होंने ऐसे कई लाखों लाखों सुंदर सुंदर महिलाओं को उत्पन्न किया अपने दिव्य शरीर से, और एक से बढ़कर एक सुंदर, जिनके सामने स्वर्गलोक की जो देवियां हैं कुरूप लग रही थी। और फिर उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि अभी आप कहिए आपको स्वर्गलोक के लिए कौन चाहिए। फिर उन्होंने एक महिला को भेंट दिया जिनका नाम है उर्वशी, और उस दिन से उर्वशी जो है वो इंद्रदेव के दरबार में सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है। तो नारायण ऋषि तो भगवान के अवतार हैं, तो इस दुनिया के सौंदर्य से उनका क्या प्रभाव, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं सबसे सुंदर है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यही है, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबसे सुंदर जो है वही भगवान है, सबका मन हरण करने वाले, जिनके सौंदर्य के सामने अन्य सारा सौंदर्य जो है वो तुच्छ प्रतीत होता है। ये दुनिया का सौंदर्य जो है भगवान के सौंदर्य का एक विकृत प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मात्र ही अगर हमें इतना सुंदर लगता है, हमें इतना आकर्षित करता है, तो असली जो वस्तु है वो कितना सुंदर होगा हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए सौंदर्य से भी भगवान को आकर्षित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान, कोई सोचेगा मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे पास इतने बड़े डिग्री हैं, मैं संस्कृत का विद्वान हूं, पंडित हूं, इतने मैंने ग्रंथ लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं, मैं बड़ा दार्शनिक हूं, लेकिन भगवान के ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान क्या है। जितना भी बड़ा विद्वान हो, ज्ञानी हो, जब बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे के बल पे सब कुछ भूलने लगता है, तो ये भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, ये भी भूल जाता है। ऐसे कई बार देखा जाता है, इतने बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं लेकिन अंत में सब कुछ भूल जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान सर्व ज्ञान के उद्गम है, सब कुछ जानते हैं। वेदांत कृत वेदवित एवचाहम, वेदांत की रचना करने वाला मैं हूं, वेदों को अच्छी तरह से भली भांति जान लेने वाला मैं हूं। भगवान त्रिकालज्ञ हैं, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो भी कुछ हुआ था, हो रहा है और होना है, वो सब कुछ जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानता हूं हे अर्जुन, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने हमारे विद्या का प्रदर्शन करने से भगवान प्रभावित नहीं होंगे। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर तुम बड़े विद्वान बन जाओगे, बीए एमए पीएचडी हो जाओगे या संस्कृत व्याकरण में प्रवीण हो जाओगे तो तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। नहीं, भगवान ऐसे नहीं कहते, क्योंकि भगवान के पास सारा ज्ञान है, सारी विद्या है, तो ऐसे छोटी मोटी विद्या से उनको क्या प्रभाव होगा उनके ऊपर। और आखिर में वैराग्य, कोई अगर सोचेंगे कि अरे हम तो ब्रह्मचारी बन गए, हमने तो सब कुछ त्याग दिया, हम कितने वैरागी हैं, अब हमारे वैराग्य की वजह से भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं, वैराग्य मात्र से भगवान प्रसन्न नहीं होते। हमारा वैराग्य भक्ति युक्त होना चाहिए और हमारी भक्ति भी वैराग्य युक्त होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आवश्यक है। वैराग्य भक्ति युक्त होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जिस कारण से हम वैराग्य के पथ को स्वीकार करते हैं वो होना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने जाते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए अनुकूल है, इसलिए हम इस वैराग्य को स्वीकार करते हैं। अन्यथा ऐसे वैराग्य भगवान को प्रसन्न नहीं करता। जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में श्रीवास ठाकुर के आंगन में और उनके घर में रात को रात भर कीर्तन और नृत्य किया करते थे, तो उस समय अचानक उन्होंने एक बार कीर्तन करना बंद कर दिया। तो श्रीवास ठाकुर ने पूछा क्या बात है, तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि कोई ऐसे व्यक्ति अवश्य यहां पर आया है जिसका अधिकार नहीं है यहां पर होने के लिए, तो क्या ऐसे कोई व्यक्ति को तुमने अनुमति दी है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा क्षमा कीजिए, आप सही कह रहे हैं, एक ब्रह्मचारी है, लेकिन मैंने सोचा कि ये बड़ा तपस्वी है, केवल दूध पीता है और कुछ नहीं, अनाज नहीं लेता, फल नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, केवल एक बार दूध पी के अपना जीवन यापन करता है, बहुत तपस्वी है, और वो आपके कीर्तन में शामिल होना चाहता था। तो महाप्रभु ने कहा दूध पीकर मेरी प्राप्ति हो सकती है। एक दृष्टि से देखा जाए, अगर केवल दूध पी के भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, बिल्लियां तो सबसे पहले भगवान को प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, भक्तों को दूध पीना चाहिए और वो भी गाय का दूध, भैंस का नहीं। परंतु अगर हम सोचेंगे कि चलो केवल गाय का दूध पिएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान की भक्ति करने के लिए हम ये सब करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम सोचेंगे ठीक है अगर भक्ति ही सब कुछ है तो वैराग्य की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं हमारी भक्ति भी वैराग्य युक्त होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भक्ति करते करते भक्ति भी करें भोग भी करें, नहीं, भक्ति करेंगे तो भोग वृत्ति को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम चार नियम पालन करते हैं। ये चार नियम क्या है, ये वैराग्य के लक्षण है, जिससे हम जो प्रमुख भोग हैं इस संसार के, इनको हम त्यागते हैं। और भगवान का वैराग्य कितना है, परिपूर्ण वैराग्य भगवान में है। अब देखिए, हम अगर कोई किसी चीज का निर्माण करते हैं, कोई कारखाना, फैक्ट्री, घर, कुछ भी हम बनाते हैं और बड़ा सुंदर वो होता है, और अचानक हमको बोला जाए ठीक है आपने बड़ा सुंदर घर बनाया, बड़ी सुंदर गाड़ी आपने खरीद ली, सब कुछ बड़ा सुंदर है, अब इसको नष्ट कर दीजिए, अरे आप बोलेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतने परिश्रम से हमने इतना बनाया, तुरंत नष्ट कर दीजिए कहेंगे तो कैसे हम कर सकते हैं, हमारे तो बहुत दुख की बात होगी, संभव नहीं है हमारे लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिना कोई पछतावा किए, बिना कोई शोक किए हुए, जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, जो इतने सुंदर हैं, इतने बुद्धि ज्ञान से भगवान ने बनाया है इसको, और फिर सोचते हैं चलो अब संहार करने का समय आ गया, नष्ट कर दो सब, वो हाय हाय नहीं करते, अरे इतने सुंदर मैंने इतने सारे ब्रह्मांड बनाए, इतने सारे लोक ग्रह मैंने बनाए, अब कैसे मैं तोड़ दूं, अब इनको रहने दो, इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों को आगे आगे रहने दो, ऐसा नहीं सोचते भगवान। समय पर जो करना है भगवान कर देते हैं। महाविष्णु जब बाहर सांस लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड उनसे बाहर निकलते हैं। फिर महाविष्णु ये नहीं कहते मैं सांस रोक कर ही रखूं ताकि अंदर सांस लूंगा तो ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो मतलब यूं ही सांस रोक कर रहना है ताकि मुझे नष्ट करने की आवश्यकता न पड़े, नहीं, समय पर अपना सांस अंदर खींच लेते हैं, सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। इसमें भगवान को दुख नहीं होता, खेद नहीं होता कि इतना सुंदर बना के अब मुझे तोड़ना पड़ रहा है। ये है भगवान का वैराग्य। देखिए अगर किसी को बताया जाए कि नई चीज खरीद कर आप उसको तोड़ दो, नष्ट कर दो, सब बहुत दुख होगा। तो भगवान के वैराग्य को लोग नहीं समझते हैं। भगवान ने रासलीला में इतने सारे गोपियों के साथ रहते हुए एक क्षण में उनको त्याग दिया और वहां से ओझल हो गए, और गोपियां शोक करने लग गईं क्योंकि गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया था कि देखो हम कितने भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, सर्व आकर्षक परम सत्य हैं, हमारे साथ केवल नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में विराजमान है। जब उन्होंने ये थोड़ा सा लेश मात्र अभिमान उनके हृदय में देखा, तुरंत ओझल हो गए वहां से, और सारे गोपियां शोक करने लगी, अरे अरे देखो हम, हमारे मन में थोड़ा अभिमान आ गया, अब श्री कृष्ण ने हमको सबक सिखा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण आसक्त नहीं हुए, तुरंत छोड़ने में समर्थ हो गए। तो यह है भगवान श्री कृष्ण का वैराग्य। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्यों से संपन्न है, तो हमारे ये छह गुणों से वो भला कैसे प्रभावित हो जाएंगे। तो जो भी कुछ इन छह चीजों में हमारे पास है, उनको हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। यही हमारे धन की, हमारे यश की, हमारी बुद्धि की, ज्ञान के, बल की, वैराग्य की, सौंदर्य का परिपूर्णता है। जो भी कुछ है सब भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए और हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यापारी थे, वो तिरुपति गए और तिरुपति में आकर उन्होंने बालाजी के सामने एक व्रत लिया। बालाजी से एक उन्होंने समझौता कर लिया कि बालाजी मैं ये अभी व्यापार करने जा रहा हूं, एक विशेष कार्य करने जा रहा हूं, अगर इस कार्य से मुझे 10 लाख मुनाफा मिल गया तो मैं आपको 5 लाख दे दूंगा, ठीक है, मंजूर है आपको? तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, बालाजी ने मंजूर कर लिया होगा, तो फिर ठीक है, व्यवसाय शुरू कर दिया उन्होंने। और जब समय आ गया तो उन्होंने देखा कि मुनाफा केवल 5 लाख हुआ। अब क्या किया जाए, उन्होंने तो वायदा किया था ना बालाजी को, लेकिन वो जाकर बालाजी के सामने कहने लगे, बालाजी ऐसे लगता है कि आपको हमारे अंदर विश्वास नहीं था, इसलिए आपका हिस्सा आपने पहले से रख दिया और हमको दिया ही नहीं, तो फिर हमें अब देने की जरूरत नहीं है, तो हमारा 5 लाख हम ही रखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, जो हम कहते हैं भगवान को समर्पित करना है। जो भी कुछ हमारे पास है, किसी के पास कम हो, किसी के पास ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं। गिलहरी के जो प्रयास में और हनुमान जी के प्रयास में भगवान श्री राम उतने ही प्रसन्न हुए। उसी प्रकार से किसी के पास कम धन, किसी के पास ज्यादा धन, किसी का छोटा घर, किसी का बड़ा घर, किसी की कम बुद्धि, किसी की ज्यादा बुद्धि, किसी की ज्यादा विद्या, किसी की कम विद्या, कोई अति सुंदर, कोई इतना सुंदर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण इन चीजों से प्रभावित नहीं होते हैं, केवल हमारे भक्ति भाव से, हमारे गुणों से प्रभावित होते हैं। तो अगर हमारे पास जो है भगवान की कृपा से, हम इसी भक्ति भाव से भगवान की सेवा के लिए और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए अर्पण करेंगे, तो इसमें हमारी भलाई होगी, हमारी शुद्धता होगी। यही हमारे जीवन का ध्येय है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को हमें बिताना चाहिए। इसलिए अभी नंद महाराज प्रभु, यशोदा माता जी ने अभी ये सुंदर घर बनाया है राधा गोकुल आनंद के बिल्कुल पास में, ताकि सुबह को मंगल आरती आ सके, ताकि और सेवा जल्दी से कर सके, ताकि वैष्णव यहां पर आके रह सके, उनकी सेवा भी हो सके। उनके पास जो है घर भी है, उन्हीं के हवाले उन्होंने कर दिया। तो इसलिए यही भाव हम सबका होना चाहिए। जितना है, कम हो ज्यादा हो, सब ठाकुर जी के लिए। वृंदावन में ऐसे कह रहे हैं, ठाकुर जी के लिए हमको करना है, भगवान के लिए करना है। इसी में हमारे जीवन की परिपूर्णता है, सफलता है। तो हम प्रार्थना करेंगे श्री श्री राधा गोकुलानंद जी से, श्री श्री राधा राधा विनोद से, कि नंद महाराज प्रभु और यशोदा माता जी के, उनकी और उनके सारे परिवार की भक्ति और भी बड़ी तेजी से बढ़ती रहे और अति कृष्णमय वातावरण यहां इस घर में निर्माण हो जाए। तो आज के दिवस पर प्रथम बार कार्यक्रम हो रहा है, क्या नाम रखा रखना है, घर का नाम राधा विनोद, ठीक है। राधा राधा विनोद तो है ही, विराजे हैं, तो उन्हीं का घर है। आपका है कि उनका है? उनका है। तो हर एक भक्त को यही सोचना चाहिए कि ये हमारा घर नहीं, भगवान का घर है। स्पेशल खास करके उनके लिए ये घर बनाया गया है। राधा विनोद ठीक है, राधा विनोद तो कृष्ण का नाम है। श्री श्री राधा राधा विनोद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।